आज है 3 नवंबर दिन रविवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की वजह से हवा और खराब हुई।
मेरे डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे छोटे बच्चे हैं कि वो बच्चे सांस नहीं ले सकते हैं, इस हवा में सांस नहीं लेना चाहिए। 30 साल के बाद लंग कैंसर होगा। 1000 चीज है, ये जो प्रदूषण है वो उसके शरीर में जाके बैठ जाएगा।
भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीमों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारत बांग्लादेश के बीच पहला T20 मुकाबला आज दिल्ली में, और बिहार झारखंड पूर्वांचल में छठ की धूम।
सब बाल बच्चा सब साल भर अनंत रहता है, धूप धन से दूर होता है, छठ करते हैं।
ये वाला पर्व सीता माता करी थी जब वनवास में थी ना, तब की थी सीता माता।
होगी उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। कल से दिल्ली में वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू किया जा रहा है, लेकिन इस बीच पंजाब और हरियाणा में खेतों में पराली जलाने का सिलसिला जारी है। उत्तरी सीरिया में तुर्की के नियंत्रण वाले तेल अबियाद शहर में एक बम धमाका हुआ है, जिसकी चपेट में आकर कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने धमाके के पीछे कुर्द लड़ाकों के समूह YPG का हाथ होने का आरोप लगाया है। पिछले महीने तक इस इलाके पर कुर्दों के नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का नियंत्रण था। हालांकि अभी तक किसी समूह ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। तुर्की का कहना है कि वो अपनी हिरासत में मौजूद इस्लामिक स्टेट समूह के सदस्यों को वापस उनके देश भेजेगा। तुर्की के गृह मंत्री ने इस मामले में यूरोप की निष्क्रियता की आलोचना की, क्योंकि यूरोपीय देश सीरिया में IS के लिए लड़ रहे अपने नागरिकों को वापस लेने के प्रति अनिच्छुक रहते हैं। उत्तर पूर्वी सीरिया में IS के हजारों लड़ाकों और उनके परिवार वालों को कुर्द बलों ने हिरासत में ले रखा था। उस इलाके में तुर्की के हमले के बाद अब तुर्की इन कैदियों को देख रहा है। तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने कहा, कुछ वक्त तक तो हम इन विदेशी जिहादियों को अपने कब्जे में रखेंगे, फिर हम उन्हें उनके देश वापस भेज देंगे। हम दाएश के सदस्यों के लिए होटल नहीं चलाते। वो कहते हैं कि हमने उनकी नागरिकता वापस ले ली है, लेकिन उनका ये नया तरीका सही नहीं है। ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। ये थे गृह मंत्री सुलेमान सोयलू के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने वादा किया है कि अगर वो 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव में जीतते हैं तो एक ऐसी सरकार का नेतृत्व करेंगे जो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सख्त होगी। स्विंडन में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन से बड़ी चुनौती और कोई नहीं है, और लेबर पार्टी के पास इससे निपटने की रणनीति है।
हरित औद्योगिक क्रांति जो स्थायी नौकरियां देगी, हम हरित ऊर्जा तकनीक में निवेश करेंगे, ऐसे घर बनाएंगे जो पर्यावरण के अनुकूल होंगे, एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खड़ा करेंगे। ये थे लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने माली के एक सैन्य अड्डे पर शुक्रवार को हुए IS के हमले की निंदा की है। संस्था का कहना है कि वो क्षेत्र में स्थायी रूप से शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। हमले में 49 सैनिकों की मौत हो गई थी। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जर्मनी की ग्रीन पार्टी के 2 प्रमुख नेताओं का कहना है कि उन्हें अमेरिका के एक नवनाजी समूह की जर्मन शाखा ने जान से मारने की धमकी दी है। उन्हें ये धमकियां ईमेल के जरिए दी गई। तथाकथित हिट लिस्ट में इन दोनों नेताओं के नाम सबसे ऊपर हैं। क्लाउडिया रोथ ने इसे नेताओं, यहूदियों, मुस्लिमों, कलाकारों और अप्रवासी पृष्ठभूमि के लोगों को डराने की कोशिश बताया। इस हफ्ते की शुरुआत में ड्रिस्डन शहर में नाजी स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी घोषित की गई है। इथियोपिया के महान एथलीट हाइले ग्रेब्रेसिलासी ने कहा कि फेसबुक पर साझा की गई फर्जी खबरों की वजह से हाल में हुई नस्लीय हिंसा भड़की, जिसमें 78 लोगों की मौत हो गई। पिछले महीने उस वक्त झड़पें हो गई थी जब एक प्रभावशाली मीडिया संस्था के मालिक ज्वार मोहम्मद ने कहा था कि प्रशासन ने उनके अंगरक्षकों को हटाकर उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। डबल ओलंपिक चैंपियन ने फेसबुक से उन झूठी पोस्ट को हटाने की अपील की जिनकी वजह से हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत भारत की राजधानी दिल्ली से, जहां हवा में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली की हवा में इस समय ताजगी का नामोनिशान नहीं है और हवा की बिगड़ती सेहत यहां रहने वाले लोगों की सेहत के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है।
मेरा नाम अशीर है, मैं 15 साल की हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। गवर्नमेंट ने एयर पोल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमें पता था कि फेस्टिवल सीजन आएगा, कि दिवाली होएगी और उसके और हमने कुछ नहीं किया कि इस पोल्यूशन को कम करने के लिए।
मेरे डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि बच्चे, मेरे बच्चे छोटे बच्चे हैं, कि वो बच्चे सांस नहीं ले सकते हैं, इस हवा में सांस नहीं लेना चाहिए। 30 साल के बाद लंग कैंसर होगा, डायबिटीज़ होगा, डिप्रेशन होगा, हज़ार चीज़ है जो वो ये जो प्रदूषण है वो उसके शरीर में जाके बैठ जाएगा।
मेरा आंख कभी कभी जलता है और थ्रोट खारिश होता है थोड़ा।
तो जैसा कि आपने सुना, क्या बच्चे और क्या जवान, दिल्ली की ख़राब हवा से हर कोई हलकान है। इस बीच कल यानी सोमवार से दिल्ली में गाड़ियों के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू होने जा रहा है, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरी ओर पंजाब हरियाणा में खेतों में पराली जलाने का सिलसिला थमा नहीं है, हालांकि प्रशासन इसे रोकने का दावा ज़रूर कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि पराली जलाने वालों की सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा।
सूचना देंगे उनको भी इनाम दिया जाएगा और जिला प्रशासन की ओर से उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और हम चाहते हैं कि लोग अगर वो होने से पहले ही यदि उसको मोटिवेट करके उसको रोकने का कार्य करें तो वो और भी बेहतर हो।
ये थी हरियाणा में कैथल की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी। इस बीच वायु प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, इस पर आरोप प्रत्यारोप के बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को इस समस्या के संदर्भ में एक पत्र लिखा है। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन नेगी ने चंडीगढ़ में बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा से बात की।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा ही दुख है और गुस्सा है मुझे इस बात का कि कोई भी इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए गए हैं, इस तरह के कदम नहीं उठाए गए जिससे जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसका कुछ किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि आप लगातार हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से ये प्रदूषण दिल्ली में फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है। और उनका कहना है कि केवल यही वजह नहीं है, इस डेटा मौजूद है जिससे पता चलता है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं, तो उनका कहना है ये सारे कारण भी हैं जिसकी वजह से हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को कि दुख की बात ये है कि आपने इस पर आज तक कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। हम हमेशा से ये उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार इसके बारे में जरूर कुछ करेगी लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। उन्होंने इसका भी जिक्र किया है कि एक मैंने सुझाव दिया था कि किसानों को 100 रुपए पर क्विंटल बोनस दिया जाए ताकि वो पराली का मैनेजमेंट ठीक से कर सके, इसके बारे में भी कुछ नहीं किया गया है।
दिल्ली में जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पे पटाखों का या फिर दिल्ली का अपना पॉल्यूशन कम है और जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, वहाँ से जो है धुआं उठ के दिल्ली में आता है और तब यहाँ पे जो स्मॉग बनता है। तो ये पराली की राजनीति कितनी ज्यादा चल रही है पंजाब में खासतौर पर?
पराली की राजनीति बिल्कुल चल रही है, पंजाब में भी चल रही है, हरियाणा में भी चल रही है। मैं खुद अभी चुनाव के दौरे पर जब गया था हरियाणा में, तब मैंने देखा था कि किसान शरेआम जो है पराली को जला रहे थे, मेन रोड्स पर जो राजमार्ग हैं उन पर भी पराली को जलाया जा रहा था। तो हमने कुछ किसानों से बात की और ऐसा भी लगा कि क्योंकि चुनावी मौसम था तो कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की जा रही थी, इस तरीके से इस वजह से भी लोग जो है ओपनली जला रहे थे। इसी तरीके से पंजाब में भी देखने में आ रहा है कि कागजों पर ऐसा है कि जुर्माना भी किया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है किसानों के खिलाफ जो पराली जला रहे हैं, लेकिन फिर भी पराली के जो जलाए जाने के जो इंस्टेंसेस हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं जैसे पिछले सालों में देखने को मिल रहे थे।
अगर पराली ना जलाए किसान तो क्या किसानों के पास ऐसी सुविधाएं भी हैं, ऐसी तकनीक भी उनके पास है क्या कि वो पराली जलाने के अलावा दूसरे विकल्पों पे भी जा सकता है?
इसके बारे में कई विकल्प उन्हें दिए गए हैं, जैसे हैप्पी सीडर एक विकल्प है और उसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं, कुछ बड़े बड़ी संस्थाओं को प्लांट लगाने के लिए जमीन दी गई है, लेकिन अभी तक हमने प्लांट चालू होते हुए नहीं देखे हैं। किसानों का कहना है कि जो पराली की मैनेजमेंट है वो हमें ज्यादा महंगी पड़ती है, चाहे वो हैप्पी सीडर है, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम। तो किसानों का ये कहना है कि ये हमें महंगी पड़ती है और अगर हम इसे जलाते हैं तो वो हमारे लिए सस्ता पड़ता है, इसलिए ज्यादातर किसान यही प्रेफर करते हैं कि उसको जला दिया जाए और उसके बाद जो है अगला जो उनका क्रॉप है उसकी तैयारी की जाए।
ये थे चंडीगढ़ से बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा। राजधानी दिल्ली ने कल एक और वजह से सुर्खियां बटोरी और वो वजह थी कोर्ट में वकीलों और पुलिस वालों के बीच हिंसक झड़प, जिसके बाद नजर आई जली हुई गाड़ियां और कोर्ट की क्षतिग्रस्त इमारत। ज्यादा जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी।
दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाती ये आवाजें वकीलों की हैं, जो दिल्ली की 30,000 कोर्ट के बाहर मौजूद थे। बीती शाम दिल्ली की 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। झड़प की वजह पार्किंग को लेकर हुआ विवाद बताया गया। वकीलों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस ने झड़प के दौरान फायरिंग की, तो वहीं पुलिस का कहना है कि आक्रामक वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों में आगजनी की और हंगामा किया। विवाद पर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्किंग एरिया में पुलिस वैन और वकील की गाड़ी के बीच टक्कर हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। वकीलों का कहना है कि पुलिस ने विरोध करने वाले वकीलों को हवालात में बंद कर दिया और उनके साथ मारपीट की।
ये तो दादागिरी है जो पुलिस ने की है। एक नौजवान वकील को आप लॉकअप के अंदर ले जाके पीटते हैं, उसको मारते हैं बुरी तरीके से और उसको बाहर फेंक देते हैं, तो सारे लोग प्रोवोक होंगे कि नहीं होंगे?
वहीं दिल्ली पुलिस नॉर्थ के अतिरिक्त डीसीपी हरेंद्र सिंह का कहना है कि गुस्साए वकील बदला लेने के लिए लॉकअप के अंदर आना चाहते थे, जिसे पुलिसकर्मियों ने रोका।
जवान जिनके साथ उनकी हाथापाई हुई थी, हम लोगों ने इंटरवेन करके लॉयर्स को अंदर नहीं घुसने दिया, लॉकअप को अंदर से बंद करके रखा, ताकि ना सिर्फ हमारे जवान सेफ रहें बल्कि जो सैकड़ों प्रिजनर्स भी थे जो पेश होने आज कोर्ट में आए थे वो भी वहीं पे थे और उनके लाइफ को भी रिस्क था। काफ़ी देर तक जब लॉकअप नहीं टूट पाया उनसे तो दे वॉन्टेड टू ब्रेक इट बाई इग्नाइटिंग फायर। वहाँ पर 2-3 बाइक्स को रख के उन्होंने उसमें आग लगाई और कोशिश यही थी कि इसके ब्लास्ट से गेट टूट जाए।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने पुलिस की कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण बताया है और आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।
इतना ब्रूटल बारबेरिक एक्शन है, इसको बार या कोई भी आम आदमी इसको टॉलरेट नहीं कर सकता है। हमारी ये मांग है, हमने हायर पुलिस ऑफिशियल्स को LG को भी कहा है कि इमीडिएटली जो गिल्टी पुलिस ऑफिशियल या पुलिसमैन हैं उनको अरेस्ट करें और जो इंजर्ड हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, अदरवाइज अगर कुछ अनटवर्ड हो गया तो उसके बाद सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाएगा।
वकीलों का कहना है कि उनके एक साथी को गोली लगी है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
एक वकील को गोली लगी है, वो अभी क्रिटिकल हालत में है।
घटना से गुस्साए वकीलों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सी और एक जेल वाहन को आग के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में 10 पुलिसकर्मियों को चोट आई है।
बाहर भी जब उन्होंने पथराव किया है तो मुझे पता चला कि कुछ ऑफिसर्स और जवान घायल हुए।
इस बीच वकीलों ने 4 नवंबर यानी सोमवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। नवीन नेगी, BBC दिल्ली।
कार्यक्रम में आगे पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा और खेल की खबरें। उससे पहले बात अमरीका से एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे चरमपंथी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक मदद को रोकने में नाकाम रहा है। ये रिपोर्ट अमरीकी विदेश विभाग की ओर से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में और क्या प्रमुख बातें हैं और ये पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, जानने के लिए BBC संवाददाता नवीन नेगी ने अमरीका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान से बात की।
ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट वो ये कह रही है कि पाकिस्तान ने दो चीजें अभी तक नहीं की। एक तो कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसमें जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको कम करने में या उनके खिलाफ एक्शंस लेने में उसने कोताही की है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, यानी जो खुलेआम फंड रेजिंग जो होती है, वो को रोकने के लिए कोई स्टेप्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। और आप देखेंगे कि सड़कों पर भी डब्बे लगे हुए होते हैं लश्कर तैयबा या दूसरे ग्रुप्स के फंड रेजिंग के लिए, और लोग आमतौर पर पैसे डाल देते हैं, जैसा कि नमाज के लिए जुम्मा में जो लोग पैसे डालते हैं मस्जिद के लिए, वैसा वहां पे आमतौर पर लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये जो कल्चर में आ गया है जिहादी फंडिंग, उसके खिलाफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक तहरीर शुरू करे।
तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद, और FATF ने भी जो कहा था कि आपने हमारे 27 पॉइंट्स में से जो है कई सारे पॉइंट्स माने ही नहीं है, पाकिस्तान पे कितना दबाव अब आप देखते हैं पड़ता हुआ?
मुझे लगता है कि अगर कुछ अटेंशन दिया जाए इस मसले पर तो इट विल कंटिन्यू। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये रिपोर्ट हर साल आती है और रिपोर्ट ऐसे ही होती है कि पाकिस्तान इज स्टिल नॉट टेकिंग एक्शन, तो ये एक नॉर्म भी बन गया है। मतलब पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल लीडर्स का एटीट्यूड में थोड़ा इम्यूनिटी आ गई है कि वो रिएक्ट उतना स्ट्रांगली नहीं करते जितना करना चाहिए इस मसले को लेकर।
क्या आपको ये भी लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि हर साल ये रिपोर्ट आती है और हर साल लगभग ऐसी ही बातें उसमें दोहराई जाती हैं कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग कर रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का रुख भी जो है एक तरीके का ही बना हुआ है, वो भी और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाते हैं?
देखिए, मतलब इस रिपोर्ट में ये भी तवज्जो मीडिया जो कवरेज कर रही है, ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है सो अफगानिस्तान तालिबान के साथ अमेरिका के जो डायलॉग चल रहे थे उसमें मदद करने का प्रॉमिस जरूर किया, लेकिन उस स्टेप्स पे भी कुछ आगे नहीं। और हक्कानी जो ग्रुप है उसकी भी जो फंड रेजिंग हो रही है, और वो खुलेआम जो जिस तरह से ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के चंद प्रोविंसेस से, तो हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ भी पाकिस्तान ने कोई मजीद स्टेप्स नहीं लाए। तो देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान की तरफ अमेरिकन का जो मिलिट्री कल्चरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो तो बहुत बदल गया है। मतलब अगर आप 15-20 साल के ऊपर देखें तो इंडिया वाज नॉट कंसिडर्ड एक एलाई, और पाकिस्तान एक क्लोज फ्रेंड और एलाई के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब वो पूरा रिवर्स हो गया है। इंडिया जो ट्रेड रिलेटेड और अब कश्मीर रिलेटेड मुश्किलात के बावजूद इंडिया को एक को डेमोक्रेसी, एक मेजर पार्टनर, इकोनॉमिक पार्टनर और एलाई और पोटेंशियल क्लोज एलाई के रूप में देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो वो नेसेसरी ईविल का कॉन्सेप्ट आ गया है।
ये थे अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुख्तदर खान। और आज रविवार है, हर रविवार हम आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा आलेख। BBC संवाददाता इकबाल अहमद का है, सुनिए अपूर्व कृष्ण की जुबानी।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते विपक्ष के आजादी मार्च से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। पाकिस्तान की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी और धार्मिक संगठन जमीतुल इस्लाम एफ का आजादी मार्च राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। 27 अक्टूबर से कराची से शुरू हुए आजादी मार्च का आह्वान JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने किया है, लेकिन इस मार्च को तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल है। अखबार जंग के अनुसार मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्तीफा देने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी है। मौलाना ने शनिवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इमरान खान ने 2 दिनों में इस्तीफा नहीं दिया तो आवाम का ये समंदर इमरान खान को घर से भी गिरफ्तार करने की ताकत रखता है। अखबार जंग के अनुसार शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हमले करते हुए कहा, इमरान खान जादू टोने से सरकार चला रहे हैं, फूंके मारकर लोगों की अहम पदों पर तैनाती हो रही है। इमरान जादू टोने के जरिए बदलाव लाना चाहते हैं, वो एक घमंडी इंसान है और उनका दिमाग खाली है। इस अवसर पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने कहा कि सेना सबकी है और उसे विवादों में नहीं आने देंगे। आजादी मार्च के नेताओं की सेना को इसमें घसीटने की कोशिश का सेना ने जमकर जवाब दिया है। अखबार नवाए वक्त के अनुसार सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक बयान जारी कर कहा कि इस मामले में सेना पूरी तरह तटस्थ है। सेना के प्रवक्ता का कहना था, सेना का समर्थन चुनी हुई सरकार के साथ होता है, सेना पर किसी तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए। अखबार दुनिया के अनुसार सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि किसी को भी किसी सूरत में देश की शांति और स्थिरता को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अखबार नई बात के अनुसार इमरान खान ने कहा है कि वो इस्तीफा मांगने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अखबार के मुताबिक इमरान खान ने आज़ादी मार्च के आयोजकों का मजाक उड़ाते हुए कहा, सियासी यतीम इकट्ठे हो गए हैं, जितने दिन चाहें बैठें, धरना दें, रुकावट नहीं डालेंगे, खाना भी देंगे, लेकिन समझौते के खिलाफ कोई काम हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी, सारे भ्रष्ट जेल जाएंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव से जुड़ी एक खबर भी पाकिस्तान के अखबारों में छपी है। अखबार नवाए वक्त के अनुसार पाकिस्तान ने भारत से साफ कह दिया है कि भारत प्रशासित कश्मीर के मौजूदा हालात में भारत को कुलभूषण जाधव के साथ दोस्ताना मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ICJ ने पाकिस्तान से कहा था कि वो कुलभूषण जाधव को कौंसुलर एक्सेस मुहैया कराए। पाकिस्तान का कहना है कि उसने ICJ के आदेशानुसार कुलभूषण जाधव को एक्सेस भी दी और उनके परिवार वालों से भी उनकी मुलाकात की इजाज़त है। अखबार नवाए वक्त के अनुसार भारत ने कुलभूषण जाधव से अनौपचारिक माहौल में मिलने देने की अपील की थी, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इससे ज़्यादा अनौपचारिक माहौल में कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अखबार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि इसके लिए भारत पहले अनुकूल माहौल पैदा करे।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की समीक्षा के साथ ही जरा देर से ही सही दिल्ली से छपने वाले अखबार भी स्टूडियो में आ पहुंचे हैं, गुरप्रीत के हाथों में है।
जी, चरमपंथ के खिलाफ भारत के साथ लेकिन कश्मीर पर करेंगे बात, ये कहा है जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने, जो भारत दौरे पर आई हुई हैं। अयोध्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करे सरकार, ये मुस्लिमों ने कहा है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले चिंतित मुस्लिमों ने अयोध्या में जिला प्रशासन से उनकी घनी आबादी वाले इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है, ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर है कि राम रहीम की सहयोगी से हटे देशद्रोह के आरोप, सबूतों के अभाव में पंचकुला की एक अदालत ने हनीप्रीत इंसा और अन्य 40 पर से देशद्रोह के आरोप हटा लिए हैं, जो पंचकुला में 2017 में हुई हिंसा के मामले पर उन पर लगाए गए थे। वहीं सिद्धू ने करतारपुर साहिब जाने की मंजूरी मांगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को निमंत्रण भेजा है, जिसके लिए उन्होंने अनुमति मांगी है।
शुक्रिया गुरप्रीत। भारत में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य हिस्सों में इस समय छठ पर्व की धूम है। सुनिए छठ पर पटना के घाटों की तस्वीर खींचती सीटू तिवारी की ये रिपोर्ट।
पटना के कलेक्टेरिएट घाट पर फुलवारी की अनीमा का पूरा परिवार आ बसा है। बीते 3 दिन से वो यहाँ पर हैं और छठ का अनुष्ठान कर रही हैं। मुस्लिम समुदाय से आने वाली अनीमा के साथ उनके परिवार के 20 लोग आए हैं। अनीमा बताती हैं कि बिटिया के बीमार पड़ने पर उन्होंने छठी मैया से मन्नत मांगी, बिटिया ठीक हो गई तो वो छठी मैया की दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची हैं और छठ का 4 दिवसीय व्रत पूरी श्रद्धा के साथ कर रही हैं।
हम अपना मना जाते थे, माने तो हम ठीक हो गए, बेटी माना जाता था तब माने तो ठीक हो गया, उसी ना करें।
छठी मैया बचाए, देखिए भगवान सबका धरती पर एक ही है, माजा भले दो बना के रखे सब, लेकिन भगवान सबका एक ही होता है, अल्लाह भी एक ही होता है, 10 गो नहीं है, ईश्वर का हो या अल्लाह का हो वही होता है।
उगा हो सूरज देव भोरे हो भिन सरावा और अधिके रे बेरावा पूजना के रे बेरावा।
ये थी अनीमा और उनके बेटे मोहम्मद सद्दाम की आवाज। कलेक्टेरिएट घाट से सटे महेंद्रू घाट पर 23 साल की सीमा 2 किलोमीटर पैदल चलकर परिवार के साथ भगवान भास्कर को अर्घ देने पहुंची है। सीमा 5 माह की गर्भवती हैं। वो कहती हैं कि लाखों की इस भीड़ में महेंद्रू घाट आने से उन्हें डर नहीं लगा, क्योंकि छठी मैया सब पर कृपा करेंगी।
दूर आए हैं और जरूर आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा, मेरे बच्चे को भी मिलेगा।
बिहार झारखंड में भगवान भास्कर की आराधना का लोक पर्व है छठ। 4 दिन तक चलने वाले इस प्रकृति पर्व में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण कर व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है और अस्ताचल गामी और उदयमान सूर्य को अर्घ देती है।
सब बाल बच्चा सब साल भर अनंत रहता है, धूप दंग से दूर होता है, छठ करते हैं।
ये वाला पर्व सीता माता करी थी जब वनवास में थी ना, तब की थी सीता माता,
सबसे पहले की थी पंचाली की थी ना, और उसके बाद सब लोग करने लगा।
ही सामुदायिकता, सामाजिकता, समरसता छठ का मुख्य स्वर है। जातीय और धार्मिक बंधनों से परे इस पर्व में समाज के हर वर्ग, हर जाति और हर पेशे की सहभागिता है।
ज्यादातर अच्छा यही लगता है ना कि कल सब कोई घर में मिलजुल के काम करता है, सब परिवार एक घर पर आता है और दूर दूर से भी आदमी जो भी आते हैं वो आनंद उठा पाते हैं।
छठ में सबसे बेटर चीज जो है वो है सफाई।
घाट को कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है, लेकिन छठ में सब माहौल देखे, सारा परिवार यहाँ के एंजॉय करता है, पूजा करता है, सब कुछ करता है। आइंदा ऐसे घाट पे कोई नहीं आएगा, लेकिन छठ में सब आता है, क्योंकि गंगा हमारी माँ है, हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए।
हालांकि बीते कुछ साल में वैज्ञानिक तर्कों के इर्द गिर्द बुने इस पर्व पर बाजार का प्रभाव बड़ा है। नदी के घाटों पर अब शोर ज्यादा हो गया है, पारंपरिक गीतों के बजाय तेज संगीत पर बने गीत, पटाखे जलाना लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि छठ मूल रूप से अनुशासन और सहिष्णुता का पर्व है। सीटू तिवारी, BBC पटना।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल भारत की महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अगले साल जापान के टोक्यो शहर में होने वाले ओलंपिक खेलों का टिकट हासिल कर लिया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक क्वालिफायर के दूसरे मैच में रूस को 7-1 से करारी मात दी। भारत की इस शानदार जीत में रुपिंदर सिंह ने हैट्रिक समेत 3, आकाशदीप सिंह ने 2, ललित उपाध्याय और नीलकंठ शर्मा ने 1-1 गोल किया। हालांकि रूस के एलेक्सी सोबेलेवस्की ने खेल के पहले ही मिनट में गोल कर सबको हैरान कर दिया, लेकिन इसके बाद मैच में भारत ही भारत था। इससे पहले पहले चरण के मैच में भारत ने रूस को 4-2 से हराया था। SV सुनील को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पहले मैच की कमियों को दूसरे मैच में दूर किया।
I think last match we were a bit disappointed. We did not perform well. So we thought this is the last match. So we have to perform well and this credit goes to supporting staff and team players. Boys have done really good job. I think I'm really happy.
दूसरी तरफ भारतीय महिला हॉकी टीम को कल दूसरे चरण के मैच में अमेरिका के हाथों 4-1 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पहले चरण के मैच में भारतीय टीम ने अमेरिकी टीम को 5-1 से हराया था, इसलिए गोल अंतर 6-5 रहा। कल एक समय 4-0 से पिछड़ रही भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने खेल के 48वें मिनट में गोल कर स्कोर 4-1 किया, जो भारत के लिए वरदान साबित हुआ। उधर भारत और बांग्लादेश के बीच आज दिल्ली में 3 T20 मैचों सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश का दारोमदार कप्तान महमूदुल्ला, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास और तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान पर होगा, जबकि विराट कोहली को आराम दिए जाने की सूरत में कप्तान बनाए जाने वाले रोहित शर्मा, शिखर धवन, KL राहुल और ऋषभ पंत के दम पर भारत भी मजबूत है। कल कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश अपने दिन किसी को भी हरा सकती है, इसलिए उसे हल्के में नहीं लेंगे।
बांग्लादेश इज अ वेरी वेरी गुड टीम। ऑल दिस इयर्स वी हैव सीन हाउ दे परफॉर्म नॉट जस्ट एट होम बट ऑल्सो अवे व्हेनेवर दे हैव गॉन आउट एंड प्लेड स्पेशली अगेंस्ट अस दे हैव ऑलवेज पुट अस अंडर प्रेशर सो देयर इज नो वे दैट वी लुक दिस टीम डिफरेंटली यू नो दे स्टिल हैव क्वालिटी इन देयर स्क्वाड व्हिच कैन अपसेट एनी टीम ऑन दैट पर्टिकुलर गिवन डे।
वैसे दिल्ली की आबोहवा इन दिनों खराब है, ऐसे में मौसम के रुख पर भी सबकी नजर रहेगी।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है, लेकिन इस बीच पंजाब और हरियाणा में खेतों में पराली जलाने का सिलसिला जारी है। उत्तरी सीरिया में तुर्की के नियंत्रण वाले तेल अबियाद शहर में एक बम धमाका हुआ है, जिसकी चपेट में आकर कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की का कहना है कि वो अपनी हिरासत में मौजूद इस्लामिक स्टेट समूह के सदस्यों को वापस उनके देश भेजेगा। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने वादा किया है कि अगर वो 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव में जीतते हैं तो एक ऐसी सरकार का नेतृत्व करेंगे जो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सख्त होगी। संयुक्त राष्ट्र ने माली के एक सैन्य अड्डे पर शुक्रवार को हुए IS के हमले की निंदा की है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।